नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अस्तित्व अनुभव, अनुभव क्रिया और अनुभव करता एक ही है। जो सारा अस्तित्व है वही अनुभव करता है, वही अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? वो स्वयं को अनुभव कर रहा है। उसका एक अभिन्न अंग है अनुभव और अनुभव क्रिया। यदि हम चाहें, यदि हम अपने अध्ययन के लिए या समझने के लिए चाहें, तो अस्तित्व को दो भागों में बांट सकते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। दोनों को अलग रूप से देख सकते हैं, दृश्य और दृष्टा। लेकिन ये विभाग है, ये सिर्फ सुविधा के लिए, समझने के लिए है। दृश्य और दृष्टा सिर्फ मात्र दृष्टिकोण है, देखने के तरीके हैं अलग अलग। एक ही अस्तित्व को दो दिशाओं से देखने का प्रयास है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। हमने देखा, जो आप अनुभव कर रहे हैं वही अनुभवकर्ता भी है, और जो अनुभव करता है वही अनुभव भी है। लेकिन हम समझने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए, हम कभी कभी उनको अलग तरीके से ले लेते हैं। जब हम अनुभवकर्ता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनुभव को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आसान हो जाता है थोड़ा। तो अनुभवकर्ता के कई नाम हैं, साक्षी, दृष्टा, आत्मन, चैतन्य, स्व, और भी बहुत से हैं। तो वो सब आपने सुने ही होंगे, पढ़े होंगे, या गुरुजनों से आपने उनका व्याख्यान सुना होगा। तो जब भी मैं ये नाम उपयोग में लाऊं तो इसका एक ही अर्थ है, जो कि अनुभव करता है, वो जो अनुभव कर रहा है इस समय, इस जगह। इसके दूसरे लेखक या दूसरे गुरु या अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये परिभाषा प्रयोग में लाएंगे हमेशा। जब भी मैं अनुभवकर्ता कहूँगा, उनका वही अर्थ है जो कि साक्षी, दृष्टा, आत्मन्य, चैतन्य या स्व का है। अहम या मैं, इसका अलग अर्थ, इसका अर्थ अनुभवकर्ता से भिन्न है। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। विषय पर आते हैं अपने, अनुभवकर्ता के गुण या लक्षण क्या हैं। तो जब हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करने जाते हैं या किसी भी अनुभव का अध्ययन करने जाते हैं, तो रूप, रंग, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़, उसकी गंध, स्पर्श, स्वाद या मात्रा, कितना बड़ा है, कितनी मात्रा में है, उसका भार, तापमान, गति, ऊर्जा, क्रिया, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। और वो करता क्या है, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया क्या चल रही है उसमें, क्या प्रक्रिया है वो। यदि वो वस्तु नहीं है तो प्रक्रिया होगा किसी तरह की, या फिर वो कहाँ से शुरू होता है, उसका आरंभ कहाँ है और उसका अंत कहाँ है, बीच में क्या होता है उसके, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करने जाते हैं। तो किसी भी अनुभव का, चाहे वो वस्तु हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, इन गुणों से हमें उसका ज्ञान होता है। ये गुण क्या है? ये विभिन्न तरीके के अनुभव मात्र हैं। जब भी आपको क्या प्रश्न किया जाएगा, उनका उत्तर अधिकतर इन गुणों के रूप में आपको मिलेगा। रूप, रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, माप, मात्रा, भार, गति, ताप, ऊर्जा, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, आरंभ, मध्य, अंत, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितने समझ में आए, जितने मुझे याद थे, उतने मैंने लिख दिए। हो सकता है कुछ और भी हो। गुणों के प्रकाश में उसकी व्याख्या कर सकते हैं किसी भी अनुभव की। और ये सारे गुण भी जो हैं, एक अनुभव के रूप में दिखेंगे आपको, विभिन्न तरीके के अनुभव के रूप में दिखेंगे। यदि आप अनुभवकर्ता को जानते हैं कि अनुभवकर्ता क्या है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, तो आप ये उसमें गुण ढूंढने जाएंगे तो देखें क्या होता है। सबसे पहले रूप। यदि मैं कहूँ कि अनुभवकर्ता का क्या रूप है, आकार क्या है उसका, कैसा दिखता है वो, दृष्टि से कैसा दिखता है, आंखों से कैसा दिखता है, या मन में, आपके चित्त में उसका क्या रूप दिखाई देता है, तो आपका अनुभव क्या रहेगा? इंद्रियों से या फिर मन से, जो अंदरूनी इंद्रियां हैं आपके मन में, उनसे, या किसी भी तरह के प्रयोग से, किसी भी तरह के यंत्र से यदि आप देखने जाएं, तो क्या रूप दिखेगा? बड़ा सरल सवाल है, और इसका जवाब भी बहुत सरल है कि आपको कोई रूप नहीं दिखेगा। हम देखेंगे, अधिकतर ये जो गुण है वो इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है उन गुणों का। यदि आप रूप देखने जाएं तो आंखों का उपयोग करेंगे, और आंखों से आपको अनुभवकर्ता नहीं मिलेगा, दिखेगा। अनुभवकर्ता वो है जो देख रहा है, जो अनुभूति कर रहा है आंखों से, वो अनुभवकर्ता है, यानी कि वास्तविक स्वयं है। उसको किसी और माध्यम से देखना असंभव है, क्योंकि यदि आप मान लें कि हाँ ये एक रूप है अनुभवकर्ता का, ऐसा दिखता है, गोल है, चौकोर है, या कोई भी आप रूप मान सकते हैं मानने के लिए, यदि आप कहें कि हाँ ये रूप है अनुभवकर्ता का, तो जैसे ही आप ये कहते हैं वो रूप जो है वो अनुभव बन जाता है, वो अनुभव के वर्ग में आता है, अनुभवकर्ता के वर्ग में नहीं आता। अनुभवकर्ता वो है जो उस रूप का अनुभव कर रहा है, उसका स्वयं का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसका स्वयं का रूप होगा वो एक अनुभव बन जाएगा और फिर से प्रश्न उठेगा कि इस रूप का अनुभव किसने किया, ये क्या है जो इस रूप का अनुभव कर रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप उसको कोई रूप देना चाहते हैं अनुभवकर्ता को, वो वहां से हट जाता है, पीछे पीछे हट जाता है और उसका जो दृष्टिकोण है वो एक अनुभव में बदल जाता है। कोई भी आप रूप मान सकते हैं कि ये रूप है, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप अनुभव करने जाएंगे तो अनुभवकर्ता का रूप नहीं ढूंढ पाएंगे, रूप का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो है जो रूप का अनुभव कर रहा है, तो उसमें रूप का गुण नहीं है, इतना आप कह सकते हैं। वैसे ही रंग, यदि आप पूछने जाएंगे कि अनुभवकर्ता का रंग क्या है, तो लाल, पीला, हरा, नीला तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभव होगा। सफेद है या काला है, क्योंकि वो भी रंग है, वो भी अनुभव है, काले रंग का अनुभव अनुभव है, सफेद रंग का अनुभव सभी रंगों का अनुभव है। ऐसे ही आप और आगे चलते जाएंगे, ध्वनि, उसमें से क्या आवाज आती है, या क्या वो बोलता है, अनुभवकर्ता बोल रहा है इस वक्त या नहीं। हम देखेंगे कि जो ध्वनि है, जो वाणी है, वो भी अनुभव है, उसका भी कुछ है जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव करता है उसका भी एक अनुभव करता है, उसकी भी एक चेतना है, उसका भी कोई साक्षी है, वो साक्षी ध्वनि नहीं है, ना ही आपको कोई प्रक्रिया दिखाई देती है वहां पे, कोई ध्वनि कर रही है या कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता वहां पे, सिर्फ साक्षी भर आपको दिखाई देता है, सिर्फ दृष्टा होने का भाव होता है, साक्षी भाव होता है, आपको वो ज्ञान है कि हाँ कोई भी ध्वनि हो, कोई भी रंग हो, उसका अनुभव हो रहा है, और इसी ज्ञान को आप अनुभवकर्ता भी कहते हैं, इसी को आप अनुभव क्रिया भी कहते हैं, और अनुभव भी इसी को कहते हैं। तो यदि आप बांटें उसको, अनुभव क्रिया को, अनुभव और अनुभवकर्ता में, तो आप देखेंगे जो अनुभवकर्ता का जो भाग है उसमें ये गुण नहीं है, रूप रंग ध्वनि का गुण नहीं है, वैसे ही गंध का भी नहीं है, गंध वस्तुओं की होती है, स्वाद वस्तुओं का होता है, स्पर्श आप वस्तुओं को कर सकते हैं, मन में उनकी कल्पना कर सकते हैं इन गुणों की, मन में आपके काल्पनिक रूप रंग ध्वनि गंध स्वाद स्पर्श आपको मिलेंगे आपके चित्त में, लेकिन वो भी अनुभव होंगे। कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, उनसे ये भूल हो सकती है कि हाँ ये अनुभवकर्ता कोई वस्तु नहीं है, तो जो वस्तुओं के गुण है वो उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अपने मन में चित्त में देख सकता हूँ कि अनुभवकर्ता क्या है, उसका ये रूप है, ऐसा रूप है, वैसा रूप, मानसिक गुण है वस्तुओं के, वो कल्पना है, वो एक फीकी मंद छवि है जो आपको कल्पना के रूप में, स्मृति के रूप में दिखाई देती है मन में, वो भी एक अनुभव है, वो वस्तुओं का नहीं, वो मन का अनुभव है, मानसिक अनुभव है। तो ये भूल ना करें, ये भ्रांति ना होने दें कि हाँ वस्तु नहीं है लेकिन मन से देखी जा सकती है, तो नहीं, मन मन में जो दिख रहा है आपको, या मन में जो ध्वनि या जो भी जिस भी तरह के इंद्रिय अनुभव हो रहे हैं, भले ही वो मानसिक हो, भले ही वो स्मृति से आ रहे हो या कल्पना से आ रहे हो, वो भी अनुभव ही है, उनका भी एक अनुभव करता है, उनका भी एक साक्षी है। काफ़ी लोग ये जब शुरू करते हैं अनुभवकर्ता का ध्यान, तो उनको लगता है कि आप मुझे मन में कहीं दिखेगा अनुभवकर्ता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो मन में जो आपके दिखेगा वो कल्पना होगी, अनुभवकर्ता वो होगा जो उस कल्पना का साक्षी होगा। ध्यान से देखें, कोई रंग नहीं होगा उसका, कोई ध्वनि कुछ नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, ये आपको खुद करके देखना है, आपको खुद प्रयोग करना है। यदि मैं कह रहा हूँ कि नहीं है तो बस मान लेना कि नहीं है, तो वो थोड़ी सी वो ज्ञान मार्ग के लक्षण नहीं है, आपको खुद उसका अनुभव लेने का प्रयास करना है। ज्ञान मार्ग में जो प्रमाण है, किसी सत्य के प्रमाण या अनुभव के, ज्ञान के जो प्रमाण है, जब हम उनकी चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि अनुपलब्धि भी एक प्रमाण माना गया है। यानी ये किसी बात का नहीं होना, किसी वस्तु का नहीं होना, किसी गुण का नहीं होना, या किसी प्रक्रिया का नहीं होना, ये भी एक प्रमाण है, ये भी एक तरह का ज्ञान है। तो यदि मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कि कोई ध्वनि नहीं है, कोई गंध नहीं है, उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उस वो गुण, वो रूप या रंग या जो भी हो, तो वो भी एक ज्ञान है। जैसे हवा का रंग, हवा का कोई रंग नहीं होता, या शुद्ध जल का रंग, कोई रंग नहीं होता, ये जो है एक तरह का ज्ञान है। एक तरह का हमें अनुभव हो रहा है जो प्रत्यक्ष है। ये आप अनुभवकर्ता के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, अनुपलब्धि। तो रूप, रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श अनुपलब्ध है अनुभवकर्ता के लिए, यह लागू नहीं है उस पर। आप इन गुणों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष जो अनुभव है, अप्रोक्ष अनुभव, उसमें अनुभवकर्ता के ये गुण नहीं दिखाई देते आपको। ये गुण उनके होंगे जो अनुभव हो रहा है उनके। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका माप क्या है, कितना बड़ा है अनुभवकर्ता। तो आप देखेंगे कि इसका माप भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कहाँ शुरू होता है, कहाँ आप टेप रखेंगे, फीता कहाँ रखेंगे, वजन का कैसे करेंगे उसका, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस चीज को मापा जा सकता है वो अनुभव के वर्ग में आएगी, अनुभवकर्ता के वर्ग में नहीं आएगी। अनुभवकर्ता का कोई माप नहीं है, अनुभवकर्ता वो है जो माप का या मात्रा का साक्षी है। यदि मैं कहता हूँ 2 या 3 चीजें हैं, 10-12 चीजें हैं, तो जो इस गिनती का जो साक्षी है, इस मात्रा का, वो अनुभव करता है। उसका कोई भार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई तोल नहीं है, कोई मात्रा नहीं है उसकी। एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके लिए भी आपको एक गिनती गिननी पड़ेगी कि ये एक है। उस एक का भी अनुभव होना चाहिए, लेकिन अनुभवकर्ता का कोई अनुभव नहीं होता। वो भाग है अस्तित्व का जो अनुभव कर रहा है। यदि अनुभव है तो अनुभवकर्ता भी है, और वो उसकी मात्रा नहीं हो सकती, उसकी मात्रा एक भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एक का भी अनुभव नहीं होगा। थोड़ी सी कठिन बात है, लेकिन कभी कभी हम कह देते हैं कि हाँ एक है, क्योंकि यदि 2 नहीं है तो क्या होगा, फिर एक ही होगा। 0 तो नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, पक्का पता है कि अनुभवकर्ता है वहां पर, नहीं होता तो अनुभव भी नहीं होता। कि दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ उभरते हैं, एक साथ ही आते हैं। पर्दा है तो चित्र है, पर्दा नहीं तो चित्र भी नहीं है। क्या उसमें कोई गति हो रही है, क्या वो चलित है, क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? ये जैसे ही आप कहेंगे कि इसमें ये चीज बदल रही है, वो चीज बदल रही है, इसकी ऐसी गति है, उसकी वैसी गति है, तो वो अनुभव में बदल जाएगा। अनुभवों की गतियां होती है, अनुभवों में बदलाव होते हैं। अनुभवकर्ता वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही बदलाव होगा, यदि उसका अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव में बदल जाएगा। अनुभवकर्ता स्वयं को वहां से हटा लेगा। हम देखेंगे ये चित्त की वृत्ति है, अनुभवकर्ता कुछ करता नहीं है। जब भी चित्त देखने जाएगा कि क्या गति है, उसको गति अनुभव के रूप में दिखेगी, अनुभवकर्ता के रूप में नहीं दिखेगी, तो वो भेद नहीं कर पाएगा। वहां चित्त में कोई गति भी होगी तो भी उसको नहीं दिखेगी चित्त को, क्योंकि हर अनुभव चित्त के माध्यम से ही आ रहा है। चित्त ही है जो भेद करता है अस्तित्व को, अनुभव और अनुभवकर्ता में बांटता है, और कहता है कि अनुभव क्रिया हो रही है, माप मात्रा भार गति नहीं मिलेगी, ताप नहीं मिलेगा, ठंडा है गर्म है नहीं मिलेगा, ठंडा गर्म तो अनुभव है। उसमें यदि कोई ऊर्जा है, कि ऊर्जा का लक्षण है कि गति भी होती है, कुछ बदलता है तो पता चलता है कि उस ऊर्जा की वजह से बदला है। तो यदि उसमें कुछ गति नहीं है, कुछ ऊर्जा भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बदलता नहीं है, इसलिए ऊर्जा भी नहीं है उसमें कोई। यदि वो कुछ उसमें कुछ क्रिया है, कोई प्रक्रिया है, उसका भी अनुभव होगा। यदि वो मानसिक प्रक्रिया है तो उसका भी मन के द्वारा अनुभव होगा। मन के जो अंदरूनी यंत्र है, अंदरूनी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा अनुभव होगा उसका। लेकिन आप देखेंगे तो नहीं मिलेगी आपको कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं मिलेगी अनुभवकर्ता में। हम कह सकते हैं कि उसकी एक ही क्रिया चल रही है, वो है साक्षी भाव या फिर अनुभव क्रिया। लेकिन वो भी आप देखने जाएंगे, जब चित्त उसमें भेद करता है, तो आप देखेंगे कि अनुभवकर्ता के भाग में कोई क्रिया नहीं है, ना ही वो किसी दूसरे वस्तु से प्रतिक्रिया करता है। जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो मन में है, वो चित्त करता है, चित्त स्वयं एक क्रिया है। तो जैसे ही विभिन्न अनुभव चित्त पर पड़ते हैं, संस्कार जब चित्त पर बनता है, तो चित्त प्रतिक्रिया करता है। उसको या तो अच्छा लगता है, या तो बुरा लगता है, या तो आकर्षित होता है, या तो दूर जाता है, या तो उसके इच्छाओं के अनुरूप होती है वो क्रिया, या तो नहीं होती, या तो आनंद होता है, या तो दुख होता है। ये सब सारी प्रतिक्रियाएं जो है अनुभवों से चित्त में होती है। इन प्रतिक्रियाओं का साक्षी जो है वो अनुभव करता है, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे प्रतिक्रिया है अनुभव करता में, तो वो प्रतिक्रिया एक अनुभव मात्र होगी, अनुभव करता में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ऐसे ही कोई प्रक्रिया नहीं मिलेगी, किस प्रक्रिया से वो शुरू हुआ है, किस प्रक्रिया के द्वारा उस उसका सृजन हुआ है अनुभवकर्ता को, आपको कोई प्रक्रिया नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। शरीर में, इस जगत में, या मन में, चित्त में आपको किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं मिलेगी। भौतिक हो, मानसिक हो, या आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह की प्रक्रिया अनुभवकर्ता में नहीं है। अनुभवकर्ता प्रक्रियाओं का अनुभव कर रहा है, सारी प्रक्रियाएं वो अनुभव करता है, उनका साक्षी है, उसके सामने होती है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती। या आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको दिखेगा कि अनुभवकर्ता वो है जिसके दृष्टि में प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें स्वयं में कोई प्रक्रिया नहीं होती। और भी आप उसमें गुण ढूंढने जाएंगे कि आरंभ उसका कहाँ है, समय में वो कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको नहीं मिलेगा कोई आरंभ, क्योंकि कोई आरंभ जानने के लिए उसका साक्षी होना चाहिए समय में, और वो उस आरंभ से पहले से वहां स्थित होना चाहिए। यदि वो पहले से वहां स्थित है अनुभवकर्ता, तो उसका आरंभ वहां से नहीं है। इसका मतलब वो पहले से है उस समय में, उस तारीख पे, तो उसका कोई आरंभ नहीं है। अंत के लिए भी आप यही अनुमान, यही तर्क उपयोग में ला सकते हैं कि यदि उसका अंत होगा तो उसका प्रमाण मिलना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए उस अंत का किसी को। और यदि अनुभवकर्ता वहां है, उसका अंत का दृश्य देख रहा है, अंत का दृष्टा है, तो उसका वो अंत नहीं है, किसी और बात का अंत होगा, किसी और वस्तु का अंत होगा, किसी और प्रक्रिया का अंत होगा, क्रिया का अंत होगा। लेकिन यदि अनुभवकर्ता की दृष्टि में है वो, यदि अनुभवकर्ता साक्षी है उस अंत का, तो वो अनुभवकर्ता का अंत नहीं है, क्योंकि वो तो उसको देख रहा है अंत होते हुए। तो आप किसी भी तरह के अंत की कल्पना कर लीजिए, आपको आप उसका अनुभवकर्ता का अंत नहीं ढूंढ पाएंगे, वो अनंत है। या फिर अंत और आरंभ उस पर लागू नहीं होता, उससे परे है अनुभवकर्ता, ऐसे ही उसका कोई मध्य नहीं है, क्योंकि मध्य उन क्रियाओं का होता है, उन प्रक्रियाओं का होता है जो जिनका आरंभ होता है और जिनका अंत होता है। जो आरंभ भी नहीं हुआ, जो जिसका अंत भी नहीं है, उसका मध्य भी नहीं है। और इससे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य आपके सामने आता है कि अनुभवकर्ता या अस्तित्व का, स्वयं का कोई गुण नहीं है, ये निर्गुण है। ये बड़ी काम की बात है, ये सत्य है, क्योंकि आपके सत्य के मानदंडों पर ये साबित होगा, सत्य साबित होगा। तो क्यों अनुभवकर्ता को या आत्मन को, ये साक्षी या दृष्टा चैतन्य स्व को निर्गुण क्यों कहा गया है? क्योंकि आप कोई भी गुण ढूंढने जाए उसमें नहीं मिलेगा। एक ही उसका लक्षण है अनुभवकर्ता का, कि वो निर्गुण है। इस तरह से आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा क्या है जो निर्गुण है? तो उसका उत्तर है अनुभवकर्ता, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो आत्मन है, चैतन्य है, वो ही ऐसा है जिसका कोई गुण नहीं है। बाकी कोई भी आप अनुभव ले लें, कोई भी अस्तित्व का भाग ले लें, सब में आपको कोई ना कोई गुण आपको दिखेगा। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि अस्तित्व सगुण है, ये अनुभव सगुण है, अनुभव के गुण होते हैं अनुभवकर्ता के, जो अनुभव कर रहा है, जिसको अनुभव का ज्ञान हो रहा है, उसमें कोई गुण नहीं होता। यदि उसमें भी कोई गुण हो तो फिर आप उसको अनुभवकर्ता नहीं कह पाएंगे, वो अनुभव हो जाएगा। यदि वह अनुभव है तो अनुभवकर्ता निर्गुण अनुभवकर्ता के रूप में या अरूप में आपको मिलेगा। इसका कोई स्थान भी नहीं है, इसका कोई काल भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। तो बड़ी विचित्र सी बात है ये, कि आपको पता है, आपको ज्ञान है इसका कि अनुभव करता है, लेकिन फिर भी कोई गुण नहीं दिखाई देता। शून्यता आपको वहां पे मिलेगी यदि आप अनुभव के रूप में देखने जाएंगे तो। तो बहुत लोग हैं, बहुत से शिष्य हैं आध्यात्म के, जो कि अनुभवकर्ता को अनुभव में ढूंढ रहे हैं। बेचारे आंख बंद करके बैठे रहते हैं कि दिखेगा अनुभवकर्ता किसी दिन या फिर हिमालय में जाके कहीं ढूंढते हैं कि यहाँ मिलेगा मुझे, ये किसी मंदिर में जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं कि हाँ वहाँ मिलेगा, क्योंकि हाँ उस स्थान पे वो मौजूद होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मूर्खता है, ये अज्ञान है आपका, कि आपने उस पे कोई गुण डाल दिया है, आरोपित कर दिया है उस पे गुण, और वो गुण आप ढूंढने जाते हैं। स्पष्ट है ये बात कि आपको कहीं नहीं मिलेगा वो गुण। कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये जो मुझे अनुभव हुआ है वो अनुभवकर्ता का अनुभव है, तो वो भी गलत है, वो भी असत्य है, क्योंकि अनुभवकर्ता वो है जो अनुभव कर रहा है, वो यहाँ है, अभी है। यदि आपको कोई अनुभव हो रहा है तो वो अनुभवकर्ता की वजह से हो रहा है, उसको आप कहीं और नहीं ढूंढ सकते। ये आत्मपरिचय है, आत्मपरिचय अनुभव नहीं है, आत्मपरिचय अनुभवकर्ता का ज्ञान है। बहुत सरल सी बात है, लेकिन जब अज्ञान के पर्दे पड़े हो बुद्धि पे, तो जो अज्ञानी है वो अनुभव में ढूंढने जाएगा अनुभवकर्ता। ये गलती ना करें, इस भ्रांति में न रहे कि मुझे अनुभव चाहिए रहेगा तभी मेरे को आत्म परिचय होगा। यदि आपको कोई भी अनुभव हो रहा है किसी भी तरह का, किसी भी स्थिति में चित्त की, तो वो अनुभवकर्ता की वजह से, वो साक्षी अनुभव का है, इसीलिए आपको अनुभव है, नहीं तो नहीं होता। बहुत सरल है ये, एक 5 मिनट में ये ज्ञान आत्म परिचय किया जा सकता है। आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको नकार दें, ये भी नहीं है, ये भी अनुभवकर्ता नहीं है, ये भी साक्षी नहीं है, क्योंकि इसका भी एक गुण है, ये गुण मुझे दिख रहा है तो ये भी अनुभवकर्ता नहीं है, ऐसे आप नकारते जाएं उनको। हर चीज नकारने के बाद, हर चीज त्यागने के बाद, हर गुण, हर क्रिया, हर प्रक्रिया त्यागने के बाद जो बचता है वो साक्षी है, वो स्व है, वो आत्मन है। बहुत आसान है, बहुत प्रसिद्ध विधि है या नीति, नीति न ये न वो, जिसके प्रकाश में ये अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है, वो आत्म परिचय है, वो आत्मन है। तो बहुत आसान है, लेकिन यदि कोई बताए नहीं इस तरीके से तो चित्त घूमता रहता है, उसकी वृत्ति शुरू रहती है किसी न किसी अनुभव में, वो चाहता है कि मुझे वो भी मिल जाए जो अनुभव कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको मिल गया है अनुभव में अनुभव करता, तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि आपका सारा समय नष्ट हो गया उसको जानने में। वो अनुभव मात्र है, चाहे कैसा भी हो अनुभव, किसी भी रूप में आपको आया हो, अनुभव करता नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखें। तो नीति, नीति बहुत आसान है, इससे भी आसान है कि जो भी अनुभव किया जा सकता है वो अनुभव करता नहीं है। अनुभव करता की व्याख्या नकारात्मक रूप में करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ये अनुभव नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, इसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको तोला नहीं जा सकता, इसका कोई भार नहीं है, इसका कोई माप नहीं है, स्पर्श नहीं कर सकते इसको, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती इसमें, कोई प्रक्रिया भी नहीं होती, कहीं शुरू नहीं होता, कहीं अंत नहीं होता, इसका कोई मध्य भी नहीं है, इसका कोई, इसके कोई भाग भी नहीं है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। तो नहीं 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 नहीं, सब कुछ नकारात्मक है। यदि आपको कोई चीज मिल जाए जिसमें कि कोई एक भी गुण हो इनमें से, तो बहुत आसान है आपको बताना कि हाँ ये अनुभव है, इसको अनुभव के वर्ग में डालो, अनुभव करता नहीं है। बहुत मूल बात है अध्यात्म में, क्योंकि आत्म परिचय से ही अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से होती है कि आत्म क्या है, अनुभवकर्ता क्या है, साक्षी क्या है, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही है जो आत्म के विषय में हो वो अध्यात्म। तो अनुभवकर्ता निर्गुण है, इसकी यह व्याख्या है। कोई भी सत्य का कोई भी मानदंड ले लें, कितना भी विचित्र चित्र बना लें सत्य का, कितना भी कठोर मानदंड बना लें, लेकिन अनुभवकर्ता को आप नकार नहीं पाएंगे, उसको असत्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? अनुभव को आप असत्य कह सकते हैं कि ये अनुभव जो है माया है या फिर नहीं है, कह सकते हैं, कौन रोकता है, लेकिन अनुभवकर्ता को कह सकते हैं क्या कि ये नहीं है या ये ऐसा है या वैसा है या सिर्फ दिखता है या माया है, आप प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं अनुभवकर्ता नहीं है, असत्य है। तो आप देखेंगे कि इसका भी अनुभव हो रहा है, इस प्रयोग का भी साक्षी है, इस नकारात्मक भाव का, इस नकारात्मक विचार का भी एक साक्षी है। यदि हाँ साक्षी है, यदि उसका भी अनुभव हो रहा है तो अनुभवकर्ता है। तो यदि आप नकारने जाएं अनुभवकर्ता को, तो वही उसका प्रमाण हो जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अनुभवकर्ता ऐसा है जिसको आप नकारने भी जाएं, किसी भी तरीके से उसको असत्य प्रमाणित करने जाएं, सिद्ध करने जाएं, तो वो खुद को सिद्ध कर देता है, स्वयं सिद्ध है वो। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसी कोई और वस्तु नहीं है यहाँ आपके अनुभव में जो ऐसी हो। आप इस पर विचार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इस बात पर मनन कर सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु ढूंढने जाएं जो स्वयं सिद्ध हो, इस तरीके से इतनी निश्चित तरीके से सिद्ध हो सके। कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अनुभव करता है ऐसा, जिसको नकारने भी जाएं, कितना भी कठोर सत्य का मानदंड बना लें, अनुभव करता वहां रहेगा जो उस मानदंड को का भी साक्षी है। यही सत्य है, बाकी आप हर चीज असत्य सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अनुभव करता को नहीं असत्य सिद्ध कर सकते, कितना भी प्रयास कर लें संभव नहीं है। उसको चैतन्य भी कहा गया है, चित्त को प्रकाश देता है कुछ भी अनुभव करने का, चैतन्य जो चित्त के पीछे है। ये मेरी परिभाषा है, कुछ लोगों की कुछ और होगी, लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि सभी अनुभव चित्त के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन जो चित्त को प्रकाशित करता है, जो इन अनुभवों को प्रकाशित करता है, जो जो इसका साक्षी है, वो अनुभव करता है, वो आत्मन है। चित्त को कोई अनुभव नहीं होते, चित्त स्वयं एक अनुभव है, लेकिन अनुभव का माध्यम है, तरह तरह के अनुभव चित्त के माध्यम से होते हैं। यदि आप देखेंगे इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हमने देखा न सुखी है न दुखी है, सुख यानी कि जब आदमी नाचने गाने लगता है, हंसने लगता है और ये जो भाव चित्त में आता है सुख का, उसका भी अनुभव होता है, तो वो भाव भी नहीं है। कोई सा भी भाव हो, कोई सी भी भावना हो, कोई सी भी अनुभूति हो, वो सब चित्त में होती है, उसका भी अनुभव हो रहा है तो वो भी अनुभव करता नहीं है। इसीलिए उसको एक विशेष नाम दिया गया है, उस भाव को, वो है आनंद। सुख और दुख से परे है। यदि आप देखेंगे, जब सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, तो जो मानसिक स्थिति होती है वो आनंद की होती है। तो आनंद कहा गया है अनुभवकर्ता को, स्वयं आनंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, या सच्चिदानंद एक शब्द में। आप देखेंगे उसको कोई भाग नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो उसको पूर्ण कहा गया है। अनुभवकर्ता पूर्ण है क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं दिखाई देती, कहीं समाप्त होते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, ना उसका रूप है ना कुरूप है, इसलिए उसको सुंदर कहा गया है। उसमें कोई दोष नहीं आपको मिलेंगे, हर तरीके से उत्तम है, वहां पे आपको कुछ भी ऐसा कमी नहीं मिलेगी, कमी भी नहीं मिलेगी, कुछ ज्यादा भी नहीं मिलेगा। रूपवान भी नहीं है और कुरूप भी नहीं है, बिल्कुल पूर्ण है, उत्तम है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम का अर्थ अनुभवकर्ता, साक्षी, शिव। उसको नित्य भी कहा गया है, जो नित्य है, ऐसा एक ही है जो नित्य है। अनुभव आते जाते रहते हैं, आपने देखा होगा, एक अनुभव शुरू होता है, अंत होता है उसका, अनुभवकर्ता हमेशा रहता है, तो वो नित्य है, शाश्वत भी है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहा गया है। उसमें कोई दोष नहीं है तो निर्दोष कहा गया है। कुछ उसमें छल कपट, कुछ उसमें दाग आपको दिखाई नहीं देगा, तो निष्कलंक कहा गया है। उसमें कोई भेद नहीं दिखाई देंगे, उसके भाग नहीं दिखाई देंगे, तो अखंड कहा गया है, अखंड है। आपको एक ही दिखाई देगा अनुभवकर्ता, या उसकी गिनती भी संभव नहीं है, जब एक ही है तो क्या गिनेंगे, क्योंकि दिखता भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, तो इसीलिए उसको अद्वितीय कहा गया है, अद्वैत कहा गया है। उसमें कोई बदलाव नहीं है तो अपरिवर्तनीय कहा गया है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तनों का साक्षी है। इसके प्रकाश में हर अनुभव प्रकाशित होता है, हर अनुभव का ज्ञान अनुभवकर्ता के वजह से होता है, वो कारण है ज्ञान का, तो इसीलिए उसको दिव्य कहा गया है। दिव्य शब्द का अर्थ है जो प्रकाशित हो, वो, या दीप्त कहा गया है, जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो, वो अनुभव करता है। ज्योतिर्मयी कहा गया है, ज्योति का अर्थ है जो दिया, जो प्रकाश देता है, या फिर आलोकित कहा गया है, जिससे, आलोक का अर्थ प्रकाश है, जिससे हर अनुभव आलोकित है, वो अनुभव करता है, वो आत्मन है, वो साक्षी है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, उसके जन्म का, उसका आरंभ नहीं है, किसी कारण से अस्तित्व में नहीं आया, अस्तित्व के होने का क्या कारण हो सकता है, तो उसको स्वयंभू कहा गया है, यानी कि जो अपने आप जन्मा है, स्वयं से जन्मा है, स्वयं से अस्तित्व में आया है, उसका और कोई कारण नहीं है, स्वयंभू है। तो ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं अनुभवकर्ता के लिए, बड़े बड़े शब्द हैं, नए ज्ञानी के लिए ये सब बड़े विचित्र से लगते हैं, थोड़े से रहस्यमय लगते हैं कि इनका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है। कभी कभी लोग जो है अनुभवकर्ता को मैं से जोड़ देते हैं, तो मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सुंदर हूँ, या मैं निर्दोष हूँ, या मैं दिव्य हूँ, ऐसा वैसा, स्वयंभू हूँ, निर्गुण हूँ। जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूँ, मुझे मेरे में तो कई सारे गुण और दोष हैं, मेरे में तो कई सारे भाग हैं, खंड हैं, और परिवर्तन होता रहता है, तो क्यों कहा गया है। मैं और अनुभवकर्ता में भेद नहीं कर पाते, उसको एक ही समझ लेते हैं, तो ये गलती, ये भ्रांति बहुत लोगों में है कि मैं अनुभवकर्ता हूँ। ये सिर्फ सुविधा के लिए कहा गया है, लेकिन हम कह सकते हैं, यदि आपको भेद मालूम है कि मैं और अनुभवकर्ता में क्या भेद है, तो आप कह सकते हैं कि मैं ये सब हूँ। ये जो वचन है आपका, उस ज्ञान से आना चाहिए। यदि आपको आत्म परिचय नहीं हुआ है, तो इन वचनों का कोई अर्थ नहीं है। मैं सत्य हूँ, कोई अर्थ नहीं है इसका। मैं चैतन्य हूँ, कोई अर्थ नहीं है। यदि आपको आत्म परिचय हुआ है, जैसा कि अभी आपके सामने हुआ, आपने ढूंढा है उसको कि अनुभवकर्ता क्या है, वो क्या है जिसको हर अनुभव हो रहे हैं, उसकी व्याख्या, उस अनुभवकर्ता की व्याख्या इन शब्दों से की जा सकती है। और भी कई सैकड़ों हो सकते हैं, ऐसे किताबों में पढ़ने जाएं, शास्त्रों में पढ़ने जाएं, या किसी अपने गुरु से पूछें, तो आपको और 10-12 तो मिल ही जाएंगे ऐसे शब्द जो कि आत्मन या अनुभवकर्ता की व्याख्या करते हैं। तो सत्य, चैतन्य, आनंद, पूर्ण, सुंदर, नित्य, निराकार, निर्दोष, निष्कलंक, अखंड, अद्वितीय अपरिवर्तनीय ज्योतिर्मयी दिव्य दीप्त आलोकित स्वयंभू शाश्वत। और भी आप 10-20 और लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है अनुभवकर्ता की। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो निर्गुण है तो आप उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हैं, मन में ये रखना पड़ेगा कि इसके कोई गुण नहीं है, ये सब व्याख्यान है, इसकी व्याख्या है कि ये वचनों के ऊपर है, वचनों के परे है। यदि व्याख्या करने जाएंगे तो अज्ञान आपको हाथ आएगा। यदि आपको आत्म परिचय नहीं हुआ है तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं आएगा। तो पहले आत्म परिचय आवश्यक है, उसके बाद आपको जैसी व्याख्या करनी है कीजिए। मन में हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी कोई व्याख्या नहीं है, निर्गुण है। यदि ये सब मैं हूँ, बहुत लोग कहते हैं, बहुत शास्त्रों में लिखा है तत्त्वम असि, और आपके गुरु भी यही कहेंगे कि तुम ये हो, देखो अपना स्वभाव तुम्हारा ये है, तो ऐसा कैसे संभव है? मैं तो ये हूँ जो यहाँ बैठा हूँ, जो बोल रहा हूँ, मेरा और अनुभवकर्ता के क्या संबंध है? अनुभवकर्ता का और मेरा, मेरा यानी कि अहम, मैं, इन दो शब्दों का क्या संबंध है? इनका क्या अर्थ है? यदि मैं कहता हूँ कि मैं अनुभवकर्ता हूँ तो उससे क्या अर्थ है? ये मैं शब्द का अर्थ जानने के लिए आपको चित्त के में गहराई में जाना पड़ेगा, चित्त का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं शब्द है वो चित्त से आता है। अनुभवकर्ता आपको कभी कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैं अनुभव करता हूँ वो नहीं करता, ये वो एकदम निर्बोध है। वो उसमें ये भी गुण नहीं है कुछ कहने का या स्वयं को कुछ मान लेने का, वो तक नहीं है उसमें। इस हमेशा चित्त कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ, और ये कहना, ये भाव चित्त में जब आता है उसका भी अनुभव होता है और उसको भी अनुभव करने वाला होता है। हाँ, मैं जो हूँ वो माया है, मैं माया का एक रूप है। ये चित्त में हो रहा है, ये चित्त में प्रक्रिया शुरू है। मैं, मेरा और मेरे लिए, ये सारे जो शब्द हैं वो चित्त में से निकलते हैं। और हाँ, वो माया है, वो वास्तविक नहीं है मैं, क्योंकि आपको बार बार आपका चित्त बताएगा कि नहीं, मैं तो ये हूँ मैं तो पैदा हुआ हूँ, मेरी ये जन्म तिथि है, और जो पैदा होता है मरता है, तो मैं नित्य नहीं हूँ, मेरे में से कोई रोशनी नहीं निकल रही है, मैं दिव्य नहीं हूँ, मैं आलोकित नहीं हूँ। तो बड़ा कठिन हो जाता है ये, क्योंकि हम तरह तरह की जो भ्रांतियाँ लेके चल रहे हैं अपने मन में, तरह तरह के अज्ञान और तरह तरह की मान्यताएं, मूर्खताएं लेके अपने मन में बैठे हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है इसका अध्ययन करना। अनुभवकर्ता और मैं भेद करना आवश्यक है। एक बार आपको भेद पता चल गया अनुभवकर्ता और मैं कि मैं चित्तवृत्ति है, अहंकार है, अहंकार की वृत्ति है, अहंकार एक प्रक्रिया है जो चित्त में चल रही है। यदि आपको ये भेद समझ में आ गया कि उस वृत्ति का भी अनुभव करता है, उसके पीछे उसको प्रकाशित करता है अनुभव करता है उस वृत्ति को, मैं की वृत्ति को, तो आप फिर बाद में आप उसको मान सकते हैं सुविधा के लिए कि हाँ, मैं ही अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ कभी शरीर होता है, कभी मैं मन होता है, कभी मैं संबंध होते हैं इस मन के चीज़ों के साथ, बदलता रहता है मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तो कुछ लोगों की बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि मैं वो हूँ जो मरने के बाद होता है, जब शरीर चला जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, तो मैं बचूंगा। वो भी मैं नहीं हूँ, वो जीव है। तो ऐसे तरह तरह के जो संबंध है वो चित्त बनाता है मैं के साथ, यह अहंकार की क्रिया है। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसा जो चित्त एक संबंध बना देता है, उसको एक नाम दे देता है, उसको मैं कहता है, जो कि भिन्न है बाकी चीजों से। यदि मैं ये हूँ तो बाकी चीजें मैं नहीं हूँ, ये द्वैत हो गया, ये दो हो गया। अब हमने देखा कि अस्तित्व एक ही है, अनुभव अस्तित्व, अस्तित्व अनुभवकर्ता एक ही की ओर इशारा करते हैं, एक ही के कई नाम है ये। तो यदि मैं यहाँ हूँ और बाकी जो भी अनुभव है वो मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब जो मैं हूँ वो अनुभवकर्ता नहीं हूँ। बड़ी सरल सी बात है। फिर यदि आपका अनुभवकर्ता को आपने जान लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि मैं वो है जो कि या तो मैं हूँ या तो मैं नहीं हूँ, दो भाग हैं, जबकि अनुभवकर्ता एक ही है। हर वस्तु, हर अनुभव अनुभवकर्ता है, अनुभवकर्ता से प्रकाशित है, जिसका साक्षी अनुभवकर्ता है। अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है, वो सुविधा के लिए, क्योंकि हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि अनुभवकर्ता है क्या, तो उसके रूप देखना चाहते हैं हम, उसका गुण देखना चाहते हैं या उसकी क्रिया प्रक्रिया देखना चाहते हैं। और ये प्रयोग जो है, ये आत्मविचार जो है, प्रश्नावली हमने इसीलिए की, उसका और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हर चीज अर्थहीन निकलती है। आप देखेंगे तो किसी भी गुण को आप लगा के देखेंगे अनुभव करता है, कोई अर्थ नहीं निकलता, या फिर नकारात्मक उत्तर आता है कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, नेति नेति। इस सारे प्रयोग का, इस सारे आत्मविचार का, मनन का एक ही सार निकलता है कि अनुभवकर्ता निर्गुण है और मैं नहीं हूँ अनुभवकर्ता, मैं भी एक वृत्ति हूँ। यदि आपने ये जान लिया कि आत्मन और मैं, अहंकार और अहम और आत्मन में भेद होता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं ही आत्मन हूँ या मैं ही साक्षी हूँ। फिर उसमें ये मान्यता आप जुड़ी हुई होनी चाहिए, समझ आपसी समझ होनी चाहिए जो सुन रहा है और कह रहा है कि क्या कहा गया है। क्योंकि हाँ, चित्त ये भी कह सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ, उस चित्त को कौन रोक सकता है? जिसको अनुभव हो रहे हैं वो मैं हूँ, कह सकता है चित्त। लेकिन अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, अहम को नहीं होते। जो अहंकार की प्रक्रिया है उसको देखा जा सकता है, उसका भी एक साक्षी है। तो पहले अनुभव होता है, उसके बाद चित्त में एक प्रक्रिया होती है अहंकार, जो कि कहता है कि ये अनुभव मैं हूँ। तो शरीर का अनुभव हुआ क्योंकि हिलडुल रहा है और मेरी इच्छाओं से हिलडुल रहा है, उसमें गति है, उसमें प्राण मेरी वजह से है तो वो मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीव हूँ। बहुत सी भ्रांतियाँ जो है चित्त में पड़ी हुई हैं, लोग बड़ा बल देते जाते हैं जब भी वो आपकी ओर इशारा करके बताते हैं कि ये तुम हो, तो वो जो भ्रांति है कि हाँ मैं शरीर हूँ, उसको बल मिलता है, वो और शक्तिशाली हो जाती है। मेरा एक सुझाव है, जो लोग नए नए शुरू होते हैं इसमें, अनुभवकर्ता को मैं ना कहें कभी भी, मैं को अनुभवकर्ता ना कहें। भेद कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक करते रहें, अपनी भाषा भी बदल दे। यदि आपको गुस्सा आता है तो ये कहने की जगह कि मैं गुस्से में हूँ अनुभवकर्ता को, क्रोध का अनुभव हो रहा है, तो कठिन है ऐसी भाषा, क्योंकि हमारी भाषा जो है द्वैत के लिए, इस जगत के लिए बनाई गई है। आध्यात्मिक भाषा आप रोज प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसी भी भाषा प्रयोग करें, उसके पीछे एक मन में समझ होनी चाहिए कि इसका अर्थ ये है। अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सत्संग में बैठा हूँ, यह सत्य है, क्योंकि जो बोल रहा है वो शरीर है, जो विचार चल रहे हैं वो मन में चल रहे हैं, वो चित्त में चल रहा है, वो मानसिक अनुभव है। जो बैठा है वो शरीर है, बैठे होने का, शरीर के बैठे होने का अनुभव है, अनुभवकर्ता का इससे कोई संबंध नहीं है इन सारे अनुभवों से। तो ये बातें अगर आपके मन में स्पष्ट हो जाती हैं, ये ज्ञान आपको हो जाता है, तो कैसी भी भाषा प्रयोग करें सब चलेगा। जो यदि आप अज्ञानी के सामने हैं, जिसको ये आत्मपरिचय नहीं हुआ है, यदि आप आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करने जाएंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे आपके मन में आप कह सकते हैं कि हाँ मैं नहीं बैठा हूँ, मुझे बैठने का अनुभव हो रहा है, या मैं नहीं चल रहा हूँ, मुझे शरीर के चलने का अनुभव हो रहा है, या मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, ये सब अनुभव हैं। ये जो मैं है वो जोड़ा गया है बाद में, चित्त ने जोड़ दिया है उस पर, उसका भी अनुभव है। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अनुभव होगा, उसके बाद ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, वो चित्त जो है उसमें भाग, दो भागों में सब बांटेगा अनुभव को। ये जो है भ्रांतियाँ हैं चित्त में। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि अनुभव करता है निर्गुण है, कोई प्रक्रिया नहीं है उसमें, अहम नहीं है वो, अहंकार अनुभवकर्ता में भेद है। सुविधा के लिए या काम चालू भाषा में हम कह सकते हैं मैं अनुभव करता हूँ, मैं ही आत्मन हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अस्तित्व हूँ, ब्रह्म के अस्तित्व। ये जो मंत्र हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, इनका अर्थ आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अनुभवकर्ता की समझ हो जाएगी। अनुभवकर्ता की समझ कैसे होगी? जब आप प्रश्न करेंगे कि अनुभवकर्ता क्या है। हमने जो 7 मौलिक प्रश्न पिछले सत्संग में किए थे, क्या, क्यों, कैसे और बाकी सब, और आपने, और उनका उत्तर क्या आया? उनका उत्तर वही आया जो अनुभव का के लिए उत्तर है, जो अनुभव क्रिया के लिए है, और जो अस्तित्व के लिए है। और आज हमने गुण देखने की कोशिश की, उसका प्रयास किया कि क्या गुण हो सकते हैं अनुभवकर्ता के। खाली हाथ आए क्योंकि कोई गुण नहीं है। आपको ये तब तक करना है जब तक आपके मन में सारे प्रश्न नष्ट नहीं हो जाते, आपकी सारी शंकाएं दूर नहीं हो जाती, तब तक आपको ये आत्मविचार करना है कि ये अनुभवकर्ता है क्या, क्या है जो इन अनुभवों को ग्रहण कर रहा है, इन अनुभवों का अनुभवकर्ता क्या है, क्या गुण है, क्या लक्षण है, क्या व्याख्यान है, मैं क्या हूँ और अहम क्या है, और मैं कैसे बदलता रहता है, कभी शरीर में स्थित होता है मैं, कभी मन में, कभी मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं व्यापारी हूँ, यह मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, बहुत बहुत सारे मैं के रूप आपको दिखेंगे, बहुत सारे। या मैं वो हूँ जो कि मरने के बाद स्वर्ग जाऊँगा बहुत लोग ये भ्रांति है, बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होगा। अनुभव करता यहाँ है, अभी है। जो भी जाएगा स्वर्ग वो अनुभव करता नहीं होगा। तो अनुभव करता मैं का सार है, मैं का जो तत्व है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। इसके ऊपर आप मैं को ले जाना चाहे, अहम का यदि आप एकीकरण करना चाहें किसी और अनुभव से, तो अनुभवकर्ता के ऊपर नहीं मिलेगा। यह आखिरी है जहाँ पे मैं पहुँच सकता है, यह अंतिम है। कुछ लोग ढील दे देते हैं, कहते हैं हाँ मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही आत्मन हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। समझने के लिए आसान हो जाता है कि हाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर जो है अहंकार पहुँच नहीं सकता। तो अहंकार के भी ऊपर है, बुद्धि के भी ऊपर है, क्योंकि बुद्धि उन बातों के में कार्य करती है जिसका अनुभव हो रहा है। यदि आपको अनुभव ही नहीं हो रहा अनुभव करता का, तो बुद्धि भी बेकार है इसके लिए। तो यदि आपको आत्मपरिचय हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है, जो बुद्धि के परे है वो बुद्ध है। अनुभव करता भी अनुभव ही है, सारे अनुभव अनुभव करता के बराबर है। तो दोनों कह सकते हैं, मैं सब कुछ हूँ या फिर मैं अनुभव करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो अद्वैत है उसको अद्वैत में परिभाषित करने जाएंगे तो बड़ा अर्थहीन सा उत्तर मिलेगा आपको, उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा आपको, उसमें विरोधाभास मिलेगा। यदि आप जो अद्वैत है उसका द्वैत में विश्लेषण करना चाहें, तो उसकी व्याख्या करना चाहें, तो मैं सब कुछ हूँ हाँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, दोनों सत्य हैं, यह आम भाषा हो गई। या फिर जो आध्यात्म की भाषा में कहें तो मैं वो हूँ जो अनुभव भी है, जो अनुभव करता भी है। यदि आप कहेंगे कि मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ, वो समस्या खड़ी करता है, वो वचन वो असत्य हो जाता है। यदि आप कहेंगे कि मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो दोनों सत्य है द्वैत के दृष्टि से देखा जाए तो, उस दृष्टिकोण से। लेकिन अद्वैत के दृष्टिकोण से कोई व्याख्या नहीं है इसकी। प्रयास भी अर्थहीनता की ओर ले जाएगा आपको, इसका प्रयास भी आपको व्याख्या करने जाएंगे तो विरोधाभास आपको मिलेगा, इसे कोई वर्णन नहीं मिलेगा, इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। हमने प्रयास किया और आपको कुछ शब्द मिले, ये सब हाँ आम भाषा में आम दैनिक उपयोग में आप ला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ा ठोस ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो माया के अंतर्गत आएगा, सत्य के अंतर्गत नहीं। चल सकता है मैं बैठा हूँ कहना आसान होता है, मुझे बैठे शरीर के बैठे होने का अनुभव हो रहा है ये कहना थोड़ा सा विचित्र लगता है, लोग आपको पागल समझेंगे, पागल खाने में डाल देंगे, आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे, आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसको कुछ हो गया है, इसको अजीब अजीब बातें करता है ये कहेंगे। तो रोज के लिए जो है आपको वही वाक्य उपयोग में लाने पड़ेंगे जो कि एक अज्ञानी की भाषा है। यदि आपके पीछे ज्ञान है तो चलता है, फिर आप कह सकते हैं ये, क्योंकि यदि दूसरा भी ज्ञानी है सुनने वाला तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा यदि आप हर अनुभव को इस तरीके से लें कि वो अनुभवकर्ता को हो रहे हैं मुझे नहीं, या मैं ये अनुभव नहीं हूँ, जो भी अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। सबसे पहला तो शरीर ही है, अनुभव है या अनुभवकर्ता है। आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि शरीर एक अनुभव है या अनुभवकर्ता है। हम देखेंगे बड़े स्पष्ट रूप से वो अनुभव के दायरे में आता है, वो अनुभव के क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे शरीर का अनुभव हो रहा है। लेकिन हाँ मुझे अंदर से अनुभूतियाँ भी हो रही है और तरह तरह के आभास हो रहे हैं और ऐसा है वैसा है, तो आप देखेंगे वो भी अनुभव है। वो वास्तविक अनुभव नहीं है, वस्तुओं के अनुभव नहीं है, भौतिक नहीं है, मानसिक अनुभव है, दूसरे तरीके का अनुभव है। तो पिछले बार हमने देखा कि जो भौतिक अनुभव है वो भी मानसिक ही होते हैं, वो भी इंद्रियों द्वारा ही होते हैं, वो भी मन में ही होते हैं, वो भी चित्त में ही होते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव नहीं, अनुभव का एक ही प्रकार है फिर, भौतिक और मानसिक नहीं है। तो यदि आपके मन में कुछ विक्षेप है या विकल्प है कि मैं वो हूँ जो मरने के बाद दिखेगा, तो मूर्खता है बहुत बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक अनुभव ही होगा जो आपको दिखेगा। ये भी दिख रहा है, कैसे भी दिख रहा हो आपको, भले ही आंखों से दिख रहा हो या बिना आंखों के दिख रहा हो, वो भी अनुभव होगा, वो भी अनुभव करता नहीं होगा। ऐसा आप करते जाएं विश्लेषण तो आपको आखिर में अनुभव करता मिलेगा, जो कि वो होगा जिसको सारे अनुभव हो रहे हैं। कह सकते कि मैं हूँ, कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पहले आत्मपरिचय होना चाहिए, वो आत्मज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो कहना अर्थहीन हो जाता है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कुछ मान रखा है, कोई मान्यता रखी है मन में, उसको निकाल के फेंक दें पहले। प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव अपनी दृष्टि से देखें, अपने सत्य के मानदंड से तोलें। यहाँ यदि आपकी तरह तरह की मान्यताएं इधर पढ़ रखा है, उधर सुन रखा है, तो फिर चित्त की वही वृत्ति चलती रहेगी, आप चित्त में अटके रहेंगे, बुद्धि में रहेंगे, आप बुद्ध नहीं हो पाएंगे। बुद्ध वो है जिसने चित्त छोड़ दिया है, जिससे ज्ञान की भी चिंता नहीं है, ज्ञान भी अज्ञान ही है। अब अनुभव करता है ज्ञान लेने जाएंगे, सिर्फ अज्ञान मिलेगा आपको। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, हाँ मुझे ये ज्ञान हो गया, मुझे वो ज्ञान हो गया है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब अज्ञान है, इसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ये अज्ञेय है। तो ये सूची लंबी होती जा रही है, देखो अभी 2-3 मैंने अभी जोड़ दिए हैं। तो अज्ञेय भी कहा गया है अनुभवकर्ता को, इसका ये ज्ञान के परे है। ज्ञान उसका होता है जिसका अनुभव होता है। ज्ञान जो है अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, जिसका अनुभव भी नहीं है उसका क्या ज्ञान होगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी चित्त में, कहाँ स्मृति में होगा, वो नहीं होगा। तो आपके कुछ पेचीदा तरह के प्रश्न यदि आपको आए, लिख के रखें और आप देखेंगे अगले दिन या उसी समय जो है आपको तुरंत उत्तर मिलेंगे। ये आत्मविचार की विधि बहुत शक्तिशाली, बहुत जानी मानी विधि है, इससे आपको गलत उत्तर कभी नहीं आएंगे। तो प्रयोग करें इसका, देखें आत्मविचार करके। श्रवण मनन निधिध्यासन यही साधना है ज्ञान मार्ग पे। अनुभवकर्ता पर भी हमने प्रयोग किया इस साधना का, हमने इसके भी जो गहराई में उतर के कोशिश की देखने की इसके मूल, और ये सब मिलता है। बड़ी रोचक चीज है अनुभवकर्ता, जो कि चीज नहीं है, जो कि वस्तु नहीं है।
आप सुन रहे थे बोधिवार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।